नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने साप्ताहिक कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर में। दोस्तों, आपकी नजर में दोस्ती के मायने क्या हैं और आपके जीवन में दोस्ती क्या अहमियत रखती है? अंजलि, तुम कुछ बोलना चाहोगी इस बारे में?
बिल्कुल नरेंद्र, क्यों नहीं। देखो, मुझे लगता है कि हर इंसान की नज़र में दोस्ती के अलग अलग मायने हैं। कुछ के लिए दोस्ती जरूरत के वक्त एक दूसरे के काम आने का नाम है, तो कुछ के लिए दोस्ती साथ मिलकर मौज मस्ती करने का नाम है। और जहाँ तक मेरे मानने की बात है, तो सच्चा दोस्त वही है जो हर कदम पर आपका साथ दे। अगर वो खुशी में आपके साथ है, तो गम में भी आपका साथ ना छोड़े। और हाँ, खुद भी बुराइयों से दूर रहे और आपको भी बुराइयों से दूर रखने की कोशिश करे।
भाई अंजलि, जो बातें तुमने शुरू में कही वो तो सभी कहते हैं, लेकिन एक बात है जो तुमने बहुत खूब कही है।
वो क्या?
यही कि अच्छा और सच्चा दोस्त वही है जो खुद भी बुराइयों से दूर रहे और आपको भी बुराइयों से दूर रखे। इसीलिए दोस्तों, मेरा आप लोगों से कहना है कि दोस्ती कीजिए, लेकिन दोस्त का चुनाव करते समय इस बात का ख्याल भी रखिए कि क्या वो इंसान जिसे आप अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, सही मायने में आपका दोस्त बनने लायक है भी या नहीं।
आजा मैं हवाओं पे बिठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है।
दोस्तों, नरेंद्र की बात पर गौर जरूर फरमाइएगा। दोस्ती कीजिएगा, लेकिन सच्चे और नेक दिल इंसान से। और नरेन, अब ये दोस्ती की बातें बहुत हो गईं। इससे पहले कि हमारे श्रोता हमसे नाराज हों, हमें जल्दी से उन्हें आज का धारावाहिक शहर की ओर सुना देना चाहिए।
तो ठीक है दोस्तों, बिना देर किए आप और हम सभी एक साथ सुनते हैं धारावाहिक शहर की ओर की 46वीं कड़ी।
पिछले एपिसोड में आपने सुना, डॉक्टर से मिलने के बाद चंदर को रह रहकर डर सता रहा है कि कहीं वो HIV पॉजिटिव न हो, और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि उसके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आए। रात के समय अचानक पुलिस दर्शन के घर पर रेड मारती है, जिसमें दर्शन और उसके कुछ साथी पकड़े जाते हैं, लेकिन चंदर और गजेंद्र किसी तरह भाग निकलते हैं और पुलिस उनका पीछा करती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी।
बस गज्जू, बस अब और नहीं भागा जाता।
चंदर, बस उस थोड़ी दूर और यार।
नहीं गज्जू, अब नहीं भाई।
अच्छा, काम करते हैं, उस ट्रक में छुप जाते हैं।
हाँ हाँ, वहीं चल।
चल चला।
इधर गैला रे, आगे ही गैला होऊंगा, आज छोड़ेगा नहीं। अभी ढूंढेला है उन लोग को, पकड़ करके कचूमर निकालने कर रे।
गज्जू, गज्जू, ये सब क्या है यार?
लगता है पुलिस का छापा था भाई।
क्या?
अरे हाँ यार, मुझे तो शुरू से ही उनकी हरकतों पर शक था कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं।
यार भगवान का शुक्र है जो हम बच गए, वरना उस दर्शन की वजह से तो आज बस बेवजह मारे जाते। अरे यार, हमारा सारा सामान तो वहीं छूट गया, और जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो भी बैग में ही रह गए।
अरे जान है तो जहान है भाई, कुछ और इंतजाम कर लेंगे, लेकिन भगवान ने बड़ी मुसीबत से बचा लिया आज।
हाँ यार गज्जू, लेकिन हम एक बार तो अपना सामान वापस लेने की कोशिश कर सकते हैं।
पागल हो गया क्या?
पागल नहीं हुआ हूँ यार, सही कह रहा हूँ। अरे इस वक्त बिल्कुल खाली है हम, ऐसे में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे और खाएंगे क्या?
ठीक है, लेकिन पहले यहाँ से तो निकलते हैं।
हाँ चल, लगता है वो पुलिस वाला निकल गया। चल चल, जल्दी निकलते हैं यहाँ से।
चल
ये हो गया, ये ले छुटकी, जरा ये बोतलें रख दे।
लाओ बाजी।
अरे जूस तो बच गया और सारी बोतलें भी भर गई।
अब इस जूस का क्या करेंगे मीरा बाजी?
क्या हुआ छुटकी?
देखो ना मधु बाजी, कितना जूस बच गया और बोतलें भी खत्म हो गई।
चल एक काम करते हैं, कुछ छोटी बोतलें पड़ी है ना, उनमें भर देते हैं।
हाँ ये ठीक रहेगा।
तू एक काम कर छुटकी, कोठरी में छोटी बोतलें रखी हुई हैं, उन्हें जाकर ले आ।
ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
अच्छा मधु, चंद्र की कोई खबर आई क्या? कहाँ है, क्या कर रहा है?
हाँ दीदी, वो उनकी चिट्ठी आई थी।
चिट्ठी?
हाँ।
अच्छा, क्या लिखा था?
उसमें
क्या हुआ मधु, सब ठीक तो है?
हाँ हाँ दीदी, सब ठीक है। वो ठीक है, वो उन्होंने लिखा था कि नौकरी ढूंढ रहे हैं और जल्दी उन्हें नौकरी मिल जाएगी।
ये तो अच्छा है। सुन मधु।
जी मीरा दीदी।
तूने उमेश के बारे में कुछ सुना?
क्या?
अरे गांव वाले उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं। सुनने में तो आया है कि शहर से कोई भयानक बीमारी लेकर आया है।
हाँ, सुनने में तो मुझे भी आया था कि उसे एड्स हो गया है। और पता है दीदी, लोग कहते हैं कि ये एक जानलेवा बीमारी है।
तभी कहूँ, कोई भी गांव वाला उसके घर जाने को तैयार क्यों नहीं है, अगर किसी को बीमारी लग गई तो?
अरे नहीं नहीं दीदी, ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसे किसी से बात करने से, उसके साथ बैठने से थोड़ी ना बीमारी किसी और को लग जाती है। अच्छा दीदी, जेठ जी भी तो आज उमेश से मिलने जाने वाले हैं ना?
हाँ, मेरे मना करने के बाद भी वो उमेश से मिलने जा रहे हैं। वो अभी तो बीमारी से बाहर आए हैं, उसके घर जाने से कहीं फिर से।
घबराओ मत दीदी, जेठ जी अब बिल्कुल ठीक है और उमेश के घर जाने से उन्हें कुछ नहीं होगा।
भगवान करे ऐसा ही हो।
ये लो बौजी, मिल गई बोतलें।
चलो अब फटाफट ये सारा जूस इनमें भर देते हैं।
चंदर, तुझे लगता है कि हमारा सामान वापस मिल जाएगा?
यार कोशिश करने में क्या जाता है।
चंदर रुक, अबे रुक एक मिनट रुक।
क्या हुआ?
अबे सामने देख, पुलिस वालों ने अभी तक पहरा बिठाया हुआ है।
पर उन लोगों ने हमको देखा नहीं है। यार मुझे नहीं लगता कि वो हमें पहचान पाएंगे।
लेकिन चंदर अगर पहचान लिया तो?
यार तू फिक्र मत कर, और फिर अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो जरा सी कोशिश करके देख लेते हैं।
एक बार फिर सोच ले, कहीं फंस ना जाए।
यार तू बस चुपचाप चल मेरे साथ।
ए, ए, तुम दोनों सही कह रहा हूँ, कहाँ चले आ रहे हो?
जी, हम तो यहाँ अपने दोस्त से मिलने आए हैं। आज ही गांव से आए हैं। क्यों गज्जू?
जी साहब जी, नौकरी की तलाश में मुंबई आए साहब जी।
अच्छा, गांव से आए हो?
जी।
आज ही आए हो?
जी साहब जी।
तुम्हारा सामान कहाँ है?
जी साहब,
सामान वो तो
साहब जी, वो तो चोरी हो गया साहब जी स्टेशन पर।
हाँ,
सामान चोरी हो गया?
जी साहब जी।
तो थाने में रिपोर्ट करवाई सामान चोरी होने की?
वो साहब जी, हम तो नए हैं ना शहर में, अब कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था साहब जी, बस यही सोच कर यहाँ आ गए। यहाँ गाँव का एक दोस्त रहता ना साहब, सोचा वो कुछ मदद कर देगा।
तुम दोनों देखने में तो शरीफ लगते हो।
जी साहब जी।
देखो बेटा, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, अभी यहाँ पे रेड पड़ी है, इसलिए भलाई इसी में है, तुम यहाँ से निकल लो वरना मुसीबत में पड़ जाओगे, समझे?
जी समझ गए। अच्छा हम चलते हैं। नमस्ते।
हाँ नमस्ते नमस्ते, चलो अब निकलो यहाँ से।
जी साहब।
यार गज्जू, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई यार।
मैं तो पहले ही कह रहा था यहाँ आना बेकार है, समझा?
लेकिन अब क्या करें यार, ना पैसों के और बिना जान पहचान के इतने बड़े शहर में हम कैसे रहेंगे?
वही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार, अब तो इतने पैसे भी नहीं है कि दिल्ली वापस जाया जा सके। फंस गए ना यहाँ आकर, तुझसे पहले ही मना किया था इस शहर में नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। लेकिन नहीं, तुझे तो ज्यादा पैसे कमाने थे ना भाई, कमा लिए पैसे, अब बता इस अनजान शहर में कौन मदद करेगा हमारी?
गज्जू तू चिंता मत कर, मुझे कुछ सोचने दे। हाँ है एक लड़की जो हमारी मदद कर सकती है। यार गज्जू, मैंने तुझे कविता के बारे में बताया था ना, मुझे लगता है मुझे उससे बात करनी चाहिए, वो हमारी कोई ना कोई मदद जरूर कर सकती है।
तुझे जो ठीक लगता है तू कर, मुझे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बस।
ठीक है, मैं ही उससे बात करता हूँ।
उमेश
कौन?
अरे उमेश, मैं हूँ हरिंदर।
अरे हरिंद्र भाईजी, आप यहाँ क्यों चले आए?
क्या मैं तुम्हारा हालचाल पूछने भी नहीं आ सकता?
नहीं, ऐसी बात नहीं है भाईजी, वो क्या है ना, जब से गांव वालों को मेरी बीमारी के बारे में पता चला है, सबने मुझसे मुंह ही मोड़ लिया है, यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने भी। अब तो मैं बस खाट पर पड़ा पड़ा जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा हूँ।
अरे बुरे समय में पड़ोसी काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? और वैसे भी तुम्हारे बारे में बाकी गाँव वालों की तरह नहीं सोचता मैं,
ये तो आपका बड़प्पन है भैजी, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मुझे भयानक बीमारी है।
अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी जरूर होगा। अच्छा तुम कहो तो मैं शहर के किसी बड़े अस्पताल ले चलता हूँ।
लेकिन इस बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है भैजी।
क्या?
काश मैंने जिंदगी को लापरवाह ढंग से ना जिया होता, वक्त रहते खुद को संभाल लिया होता तो आज मैं इस हाल में ना होता।
देखो उमेश, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरी बात मानो, तुम मेरे साथ अस्पताल चलो।
नहीं हरेंद्र भैजी, अब कहीं नहीं जाना, आप मेरा हालचाल पूछने यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर कभी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद जरूर कर लेना।
जी।
अच्छा चलता हूँ, शहर के लिए निकलना है, वापस आऊंगा तो फिर मिलूंगा।
नमस्ते भैजी।
नमस्ते।
नरेन पता नहीं कब समझेंगे लोग। अरे भाई, आप सभी एक सभ्य समाज का हिस्सा हैं। आप सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यूं किसी को परेशानी में देखकर उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए।
अंजलि तुम बात किसके बारे में कर रही हो?
नरेन तुमने उमेश की हालत देखी?
लेकिन अंजलि, ये उसकी खुद की गलतियों की सजा है।
हाँ नरेन, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, और अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। इस हालत में उसे अपने परिवार वालों की सख्त जरूरत है, उन्हें उसका साथ देना चाहिए।
अंजलि फिर भी।
फिर भी क्या नरेन, मान लो अगर हम उमेश की बात न करके लोगों के बीच में से ही किसी ऐसे इंसान की बात करें जिसे एड्स हो गया है, तो क्या उसके परिवार वाले उसका साथ नहीं देंगे? उसे घर से बाहर निकाल देंगे? उसे अकेला मरने के लिए छोड़ देंगे क्या?
अंजलि ऐसा करते हैं कि हम इस सवाल को अपने श्रोताओं से ही पूछ लेते हैं।
क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल मेरे भाई।
उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे जी, क्योंकि बीमारी तो किसी को भी लग सकती है, हमारे को भी लग सकती है। खैर वो तो अपना ही है, जब बाहर वाले के साथ हम अच्छा व्यवहार कर सकें तो अपने के साथ तो नेचुरली करेंगे। और दूसरा ये है कि उसके बचाव के उपाय करेंगे, और ऐसी वो करेंगे कि दूसरे को भी वो चीज़ ना हो, आगे ना बढ़े।
अगर हमारे परिवार में कोई HIV से संक्रमित व्यक्ति हो तो हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उसको कोई टेंशन नहीं देंगे, अच्छा खाना पीना देंगे उसको, और सही समय पर दवाइयां जो भी हो वो देंगे। उसे ये महसूस नहीं होने देंगे कि वो HIV ग्रस्त है, और उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे।
इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया होती है? जैसे हम उसको समाज में जो है रहने का अधिकार होना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको ज़िंदगी जीने का अधिकार है।
अगर यदि हमारे परिवार में ऐसा कुछ होता भी है तो उसके साथ नॉर्मल सा व्यवहार करना चाहिए, और उसे इस बात का कभी भी महसूस नहीं होना चाहिए कि उसे कोई ऐसी बीमारी भी है, और उसे डॉक्टर के पास जाके जल्द से जल्द उसका इलाज करवाना चाहिए।
HIV तो आज एक समस्या है हमारे देश के लिए, अगर हम ही इससे कतराएंगे तो शायद ये देश के लिए आज छोटी सी समस्या है लेकिन कल ये एक विकराल रूप ले सकती है।
और यदि आपके परिवार में कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति हो जाए तो आपकी प्रक्रिया कैसी होगी?
तो अगर गांव के व्यक्ति की बात है तो उसके साथ सम व्यवहार रहेगा, तो परिवार के व्यक्ति से तो ऑब्वियसली सेम सा ही व्यवहार रहेगा।
तो दोस्तों, ये थे हमारे श्रोताओं के जवाब। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि एड्स पीड़ित व्यक्ति की मदद करने, उसके साथ बैठकर बातें करने, उन्हें छूने, हाथ मिलाने अथवा साथ खाना खाने से एड्स नहीं फैलता।
मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप नरेन की बात पर गौर करेंगे, और भविष्य में अगर आपको किसी एड्स पीड़ित इंसान की मदद करने का मौका मिलता है तो आप उसकी मदद जरूर करेंगे। और अब बात कुछ विश्वास की।
दोस्तों, कौन कहता है कि शहर सिर्फ नाकामी और निराशा देता है? कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ प्रवासी दोस्त शुरुआती असफलताओं से घबरा कर वापस अपने घर, अपने गाँव लौट आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो संघर्ष करते हैं और आखिर में अपनी मंजिल पा ही लेते हैं।
और ऐसे ही इंसानों में से एक हैं आज हमारे साथ, जिन्होंने तमाम परेशानियों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार जीत उनके हौसले और विश्वास की हुई और वो अपनी मंजिल को पाने में कामयाब हुए।
तो भाई देर किस बात की, आइए मिलते हैं अपने आज के मेहमान से।
मैं हरियाणा सेहतपुर में सरस्वती कॉलोनी में रहता हूँ। मेरा मकान नंबर 133 है और गली नंबर 14। दिल्ली में पहली बार 1999 में आया था और गांव से दिल्ली इसलिए आया था कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिले और मैं अपने परिवार वालों के लिए हर महीने कुछ पैसे कमा कर दूँ। जब मैं शहर आया तो सबसे पहले तो बस अड्डे में मेरी जेब कट गई, तो मुझे अपने ताऊजी का फ़ोन नंबर याद था। तब जाकर मैंने एसटीडी से एक भाई को हाथ पैर जोड़कर कहा कि भाई मेरी जेब कट गई है और मैं दिल्ली में पहली बार आया हूँ और मुझे बदरपुर बॉर्डर जाना है। तो वहाँ से उसने फिर मैंने फ़ोन करके अपने ताऊजी को यहाँ बुलाया। मेरे ताऊजी फिर मुझे लेने आए और मैंने उस एसटीडी वाले को पैसे दिए और उनके साथ घर पर पहुँचा। उसके बाद मैं 15 दिन तक तो खाली रहा। तब मेरे ताऊजी ने मुझे एक गाड़ी के गैरेज में गाड़ी साफ़ करने की नौकरी पर लगाया। गैरेज वाले ने मुझे 800 रुपये दिए। गाड़ी का गैरेज करोल बाग में था, तो मैंने सोचा कि जैसा भी होगा मुझे यहीं रहना तो पड़ेगा ही। एक टीन की चादर चारों ओर से लगी रहती थी उस कमरे में। ज़्यादा गर्मी होती थी तो रात को नींद नहीं आती थी। माँ की याद आती थी, घर वालों की याद आती थी, तो गांव जाने के लिए पैसे कम थे, रात भर रोता रहता था। इनका सामना करने के लिए मुझे बड़ा हौसला करना पड़ा। जब मैं गैरेज आया तब मैं 8वीं पास था। 2 साल तक मैंने नौकरी की और फिर 2001 में मैंने 10वीं का फॉर्म भरा, पढ़ाई भी की और 10वीं पास कर ली। तो तब मेरी तनख्वाह 2500 रुपये कर दी गई और फिर मैंने 2003 में 12वीं का फॉर्म भरा और पास हो गया और गैरेज में काम करते करते 5 साल भी हो गए। मुझे गाड़ी चलाना भी आ गया था। मेरी तनख्वाह 2500 से 6000 रुपये हो गई थी और मेरी मेहनत और मेरी किस्मत व ईश्वर की कृपा से आज मेरी अपनी गाड़ी है और मैं कॉल सेंटर में अपनी गाड़ी चलाता हूँ। मैंने सेहतपुर हरियाणा में अपना 50 गज का एक प्लॉट भी खरीद लिया है। आज की स्थिति, मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ रहते हैं और मेरे 2 बेटे हैं और वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं।
और अब समय हो चुका है काम की बात का। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं उन नियमों के बारे में जिन्हें पुलिस कर्मियों को किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय निभाना होता है।
जी हाँ दोस्तों, भारतीय पुलिस अधिनियम की धारा 54 के अनुसार पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे से अधिक समय तक जेल में नहीं रख सकती, फिर चाहे वो व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष।
साथ ही पुलिस को गिरफ्तार किए गए स्त्री अथवा पुरुष को 24 घंटे के भीतर जिला न्यायाधीश यानी के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और महिला को गिरफ्तार करने का अधिकार महिला पुलिस अधिकारी को ही होता है।
इसके अलावा भारतीय पुलिस अधिनियम के तहत किसी भी पुलिस अधिकारी को आपको बिना कानूनी आदेश के यातनाएं देने का कोई अधिकार नहीं है।
अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो आप इसकी शिकायत अपने शहर के DCP से कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी भी महिला को किसी भी तरीके की यातना देने का प्रयास करता है तो महिला तुरंत इसकी शिकायत महिला आयोग में कर सकती है।
अगर कोई पुलिस अधिकारी आपसे आपकी नागरिकता के बारे में पूछता है तो आपको ऐसे प्रमाण पेश करने होंगे जो आपकी नागरिकता को साबित करते हैं।
इसके लिए आप अपना राशन कार्ड, पासपोर्ट नंबर, घर के कागजात जो कि आपके नाम पर हों, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर कार्ड दिखा सकते हैं और अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं।
तो ये थी काम की बात। वैसे अगर आप इस संबंध में या किसी और विषय में किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं।
हमारा नंबर है 9197176782।
बनू ना सोच तेरी कुजनी लग दी मैं अगला मैं न बागवारी घर हो लू मैं अरे यमुना सोच तेरी कुजनी लग दी मैं अगला मैं न बागवारी घर हो लू मैं
दोस्तों, अब समय हो चुका है आपकी चिट्ठी का, जिसमें हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये शुक्रिया है उस प्यार के लिए जो आप हमारे कार्यक्रम जब चले शहर की ओर को देते आए हैं।
जी हाँ दोस्तों, और आपका प्यार आपके द्वारा भेजी जाने वाली चिट्ठियों, SMS और ईमेल्स में साफ झलकता है।
और अब हम भी बिना वक्त गवाए बताते हैं आज के विजेता का नाम।
और दोस्तों, वो विजेता हैं दिल्ली के ओखला से आदिल खान।
नरेन, आदिल खान जी की ये चिट्ठी हमने उनके किसी अनुभव के लिए नहीं, बल्कि उस संदेश के लिए शामिल की है जो उन्होंने हमारे सभी प्रवासी श्रोताओं के लिए एक कविता के जरिए हमें भेजा है। भारत की आत्मा ग्रामीण परिवेश में निवास करती है, और इसे कविता की कुछ पंक्तियों के माध्यम से इन्होंने कुछ इस तरह बयान किया है। मधुर मधुर कोयल की बोली, बचपन के मित्रों की टोली, और खेल वो आंख मिचोली, एक आम की छाँव में दूर कहीं मेरे गाँव में, सावन का मौसम अलबेला, हर तरफ खुशियों का मेला, सब साथ ना कोई अकेला, उस मांझी की नाव में दूर कहीं मेरे गाँव में, सुगंध माटी की महकी महकी, मदहोश हवाएं बहकी बहकी, चिड़ियां भी कुछ चहकी चहकी, घुंघरू यौवन के पाँव में दूर कहीं मेरे गाँव में।
वाह आदिल खान जी, बहुत खूब। आदिल खान जी, आपकी इस चिट्ठी के लिए आपको मिलता है एक ट्रैवल बैग। और दोस्तों, आदिल जी की तरह आप भी ऐसा ही आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। बस इसके लिए अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों को चिट्ठियों के जरिए हमें भेजते रहिए। आप हमें अपनी चिट्ठियाँ इस पते पर भेज सकते हैं। पता है, कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121 0003।
और इसके अलावा आप ईमेल भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारी ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com। और दोस्तों, अब बात आज के संदेशों की।
मैं वेद किशोर रयाल, बादशाही थॉल, मैं संदेश देना चाहता हूँ। श्री मनोज मिश्रा बनारस जगदीशपुर केंद्रीय विद्यालय में संगीत के प्राध्यापक हैं, उनको बहुत मिस करता हूँ, उनकी बहुत याद आती है। और उन्होंने जो कुछ भी हमें दिया था उसको हमने संभाल कर रखा है और वो हमारे बहुत काम आता है। जब कभी भी उसका इस्तेमाल करते हैं तो उनकी बहुत याद आती है। और उनको कहना चाहता हूँ कि आपको जब भी समय लगे तो मुझसे बात करें। मेरा फ़ोन नंबर है 01376254151।
मैं नौ कौशल्य पुंडीरा, मैं छोटा छोटा रहने वाला हूँ और दिल्ली में भेज रहा हूँ। उनको नौ बलवंत सिंह रावत है। मैं इन वालों की थौल होते घर आने, अरे तुम तो बच्चा भी याद कर रहा ना शिवानी अभिषेक कि मामा जी को फोन नहीं आई बैसा कम थौल है ना, मेरे बच्चों तक कपड़ा लिया बच्चे याद कर दे रहा और फोन फान कर दे रहा और अपना ख्याल रखा।
मैं अंजलि बोल रही हूँ। यह संदेश मैं ग्राम कांडी तल्ली को अपनी दादी को भेज रही हूँ। दादी जी नमस्ते, मैं यहाँ ठीक हूँ और आप दादा और अपने शरीर का ध्यान देना, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं गर्मियों की छुट्टी में गाँव आऊँगी।
तो दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, जो इक्वल एक्सेस और फोर्ड फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंह मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
साथ ही दोस्तों, हम अपने सहयोगियों हेवल वाणिंग चंबा, मंदाकिनी की आवाज भणज और सभी सामुदायिक संवाददाताओं का भी धन्यवाद करना चाहेंगे।
वक्त हो चला है अब चलने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको सुनाते हैं एक संदेश जिसे हमें भेजा है सुमित देवू ने, जो लिखते हैं कि उन्हें अपने माता पिता की बहुत याद आती है और वो दिल्ली में बहुत खुश हैं और जल्द ही घर आएंगे।
सुमित देवू जी, उम्मीद करते हैं कि आपका संदेश आपके माता पिता को मिल गया होगा।
दोस्तों, अगर आप भी अपना कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो आप हमें अपना नाम और पता हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं। हम आपके संदेशों को रिकॉर्ड करके अपने कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे।
SMS करने के लिए हमारा नंबर है 9197176782। इसके अलावा कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार, सुझाव या फिर प्रवास से जुड़ी कोई भी जानकारी और अपने अनुभव आप हमें चिट्ठियों या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं।
हमारा ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com, यानी shaherkior@gmail.com।
और पता है हमारा कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 12103।
तो वक्त आ गया है अब आपसे इजाजत लेने का, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
नमस्कार।